फिर इसी तरह आप देखिए ब्लैक सीड्स, कलवंजी, इसके साथ बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, नबी सल्लम ने फरमाया, स्या दाने को में साम के अलावा हर बीमारी का इलाज है। साम का मतलब मौत है और स्या दाने से मुराद कलवंजी है। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया। ब्लैक सीड आज बहुत फेमस है माशाल्लाह, महंगा भी होता है लेकिन इसमें इलाज है। मैं अक्सर सोचती हूँ, अपने ऊपर भी लेती हूँ, दूसरों पर भी लूँगी, कि कोई दूसरा बंदा हमें कह देना कि अमेरिका में कोई डॉक्टर है जो कैंसर का इलाज करता है, तो हम मरीज को वहाँ ले जाना पसंद करेंगे, एफर्ट्स करते हैं यहाँ भी रह के जहाँ भी होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ब्लैक सीड्स में मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज है। कितने लोग हैं जिन्होंने आज सुबह भी उठ के ब्लैक सीड खाए, या जिनके घरों में इस शौक से हैं? खुशकिस्मत है आप अगर आप खाते हैं और आपके पास है एक चुटकी। देखिए आज जाके अपने लिए लिखे, छोटी सी डिबिया में डालें, जहाँ आप लोगों ने अपने काउंटर्स पे चाय की केतली और रखते हैं ना, आजकल आम रिवाज है कि आप मतलब चाय बनाते हैं, वहीं चीनी भी होती है, कॉफ़ी भी है, वहाँ आप थोड़ा सा ब्लैक सीड डिब्बी में डाल दें और साथ हनी। सुबह उठ के एक छोटी स्पून लें, जैसे टीस्पून है, उसका एक कोना सिर्फ, जैसे एक टिप उसकी हनी में डिप करें और दूसरे हाथ से आप खोल के राइट हैंड से, तो ऐसे एक चुटकी, सिर्फ इतनी चुटकी, फ्यू मे बी 4, 5, 6, 7 सीड्स उस हनी पे डाल दें और ल्यूक वार्म वाटर लें, पानी वो चम्मच चाटें और ऊपर से गर्म पानी पी लें। आप यकीन करके देखें, मैं आपको कुछ ऐसी तकलीफ़ें जो औरतों के अंदर की तकलीफ़ें होती हैं, बाज़ दफ़ा आपको होता है कि पीरियड्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, बाज़ दफ़ा बच्चों को, औरतों लड़कियों में कई किस्म के प्रॉब्लम्स हैं, अक्सर इलाज है सिर्फ ब्लैक सीड्स। मैं इसको बोल रही हूँ तो मुझे वाइट याद आ रही है कि वमा रमई तज़ रमई तो वलाकिन अल्लाह रमा, के गज़वे बदर में नबी सल्लम के हाथ से अल्लाह ने एक मट्टी की मुट्ठी कुफार के चेहरों पर डलवा के सबकी आंखों में वो दाने डाल दिए थे। तो अल्लाह के हुक्म से मट्टी बुलेट बनती है, तो मेरा और आपका इस पर ईमान क्यों नहीं? आप में से जिसका ख्याल है कि आप बीमार हैं, तो आपको भी नहीं कह रही, ऑनलाइन पे भी बहुत सारे लोग सुन रहे हैं माशाल्लाह, सबसे पूछती हूँ कि आप में से जिसका ख्याल है कि आप सिक हैं इस वक्त, क्या आपने आज सुबह ब्लैक सीड यूज़ किए? नहीं किए ना? क्या आपको पता नहीं था? ये पता भी है, पता होने के बावजूद भी हम क्यों यूज़ नहीं करते? नंबर एक, शैतान भुला देता है, उसको पता कि इसमें इनकी खैर है। दूसरी बात यह कि हमारा उन पर ट्रस्ट कम और दुनिया की चीज़ों पर ट्रस्ट है। आपको पता है कि जो हम एक गोली खाते हैं ना, जिसको पैरासीटामोल कहते हैं या आप टाइलनॉल कहते हैं या कुछ भी, बॉडी में जाके इसके ऊपर कितने हमले होते हैं। पिछले साल मुझे याद आ रहा है, दौरे कुरान जब हमने किया था, जिसमें इंसान को डिस्कवर किया था, तो उसमें हमने ऐसी बहुत सारी प्रेजेंटेशन शेयर की थी कि हमारी बॉडी के अंदर कितने कॉम्प्लेक्स निज़ाम है। यकीन करें कि आप एक कड़वी गोली जब मुँह में रखते हैं तो उसके साथ हमारे मुँह में कितनी दर्द होती है। तो आप सोचिए कि जिस्म के अंदर तो इतने सॉफ्ट टिश्यूज है, वहाँ जाके वो क्या कुछ नहीं करती होगी। हत्तुल वसा कोशिश करें कि मैंने दवाई नहीं खानी, खुद इलाज करें। मिसाल है कि सर में दर्द शुरू होता है, खुद को रिलैक्स करें, भूलें नहीं मुझे नहीं, खुद को बिजी करें, बाल खोल दें, कंघी करें, थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के फ्रेश एयर लें, फिर और कुछ लगे नहीं लग रहा जाएं पानी डालें सर में, शावर लें, ये सारे काम करते रहे, फिर नहीं चलो फिर चाय पी लें, आप देखेंगे वो पैरासीटामोल नहीं खाएंगे आप। मुझे ऐसा लगता है हम अपने जिस्म के अंदर खुद ब खुद बारूद भर रहे हैं, और जब आप दवा खाने शुरू हो जाते हैं ना, तो उसका एक इफेक्ट है कि आपकी बॉडी के अंदर से जो एंटीबॉडीज निकलनी थी ना, वो मर जाते हैं, वो पीछे जो वो कहते हैं इनको हमारी ज़रूरत नहीं है, तो जब वो ख़त्म हुए ना, तो बॉडी की रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाती है। जो लोग दवाएँ कम खाते हैं ना, वो बीमार होंगे खुद ही ठीक हो जाएंगे। जैसे वो कहते हैं ना, ज़ुकाम या नज़ला, दवा खा लो तो तुम एक हफ्ते में ठीक हो गए, और दवा ना खाओ तो 7 डेज में ठीक हो गए, इधर वे 7 डेज। तो क्यों मुश्किल में पड़ते हैं? थोड़ा रिलैक्स करें, हमारा हाल है पेट दर्द है, आप फक्की खा लो, चूरन खा लो, लेमोनेड पी लो, फिर कुछ खाते खाते हैं, हाँ पहले खाना खाते हैं, फिर उसको हजम करने के लिए इलायची खाते हैं, पान खाते हैं, छालिया खाते हैं, हालांकि आप बस लेट दम फ्री, खाली छोड़ दें, आप महसूस करेंगे कि ये सारी चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी। आप कहेंगे ये क्या हम पढ़ रहे हैं, ये तो हमारी सारी दवाइयाँ छुड़ा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी दवाइयाँ कम कर दें, आप फील करेंगे अपने आप को कि पहले से बहुत बेहतर हो गए। अच्छा, एक और बड़ी नई चीज़ आप पढ़ेंगे जो पहले शायद ही पढ़ी हो, कि जख्म के इलाज के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहंदी इस्तेमाल करते थे, ही ना? कैसे? हजरत सलमा, ये नबी सल्लम की खादमा थी, कहती हैं कि जब कभी नबी सल्लम को जख्म आता था या कांटा चुभता था तो इस पर मेहंदी लगाते थे। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया। तो घरों में मेहंदी तो होती है ना, लेकिन शर्त यह कि वो प्योर मेहंदी हो। आजकल की कौन वाली मेहंदी नहीं कि जिसके अंदर इतना एसिड डला हुआ है और पता नहीं रंग काट और क्या कुछ डालते हैं। प्योर हिना अगर घर में हो तो जख्म के ऊपर उसको लगा दें, इंशाल्लाह उससे भी जख्म रुक जाते हैं, कांटा भी चुभे तो भी। अब घर में अब काम कर रहे हैं, छुरी लग गई, क्या करें, फटाफट हिना में जाके उंगली डिप कर दें तो अल्लाह ताला आपको बचा लेगा। फिर इसी तरह समटाइम मोच आ जाती है, पाँव मुड़ जाता है, उसका क्या इलाज है? नबी सल्लम ने पाँव में मोच का इलाज सींगी लगवा कर किया। हजरत जाबिर से रिवायत है कि पाँव में मोच आने की वजह से नबी सल्लम से ने कूल्हे पर सींगी लगवाई। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया। अब ये सींगी लगवाना क्या होता है, किसको पता है? लीचिस, यानी जिस्म के अंदर, जिस तरह अभी हमने कपिंग की बात की है ना, इसी तरह एक और भी इलाज होता है, जोंक जो है वो ब्लड को चूसती है, तो पुरानी जो गंदी ब्लड की वेंस होती है ना उसके ऊपर उसको फिट कर देते हैं, तो वो पी पी के खून मोटा हो जाती है। यानी जो लीच बोलते हैं ना, लीचिस जो लगवा के जिस्म से गंदा खून निकलवाते हैं, ठीक है? इसी तरह और भी कई तरीके इसके हो सकते हैं। फिर अगला है, बिनाई तेज करने के लिए नबी सल्लम सुर्ख सुरमा इस्तेमाल फरमाया करते थे। किसी की आई साइड तो नहीं वीक हो रही है? अब उसके लिए भी वो दवाइयाँ, और आप तो छोटे छोटे बच्चों की आंखों पे ग्लासेस होते हैं। तो नबी सल्लम ने क्या किया, हजरत जाबिर कहते हैं कि मैंने नबी सल्लम को फरमाते हुए सुना कि सुर्ख सुरमा रात को सोते वक्त इस्तेमाल किया करो, इससे बिनाई तेज होती है और बाल बढ़ते हैं। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया। अब सवाल पैदा होता है कि सुर्ख सुरमा कौन सा है, क्या ये रेड कलर की कोई पेंसिल है, आईलाइनर है, क्या है? तो ये कोई होता होगा, मुझे भी नहीं पता ये कहाँ होता है, लेकिन काला सुरमा तो सुना हुआ है, माइट भी कोई ब्राउनिश हो, लेकिन इससे नेचुरल चीज़ मुराद है, कोई आप कॉस्मेटिक्स की रेड चीज़ आंखों में ना डालें। जी आपको कुछ पता है तो बताइए। रियली रेड कलर का होता है, ऐसा रेडिश होगा ना? अच्छा, और आप देखिए बाल भी लंबे होते हैं, शौक है किसी को बाल लंबे करने का? अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसी तरह आंखों की इलाज के लिए खुम्बी, मशरूम्स, अल्लाह ताला ने खुम्बी को आंखों के लिए शिफा बख्श बनाया। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि बाद सहाबा ने रसूलुल्लाह के सामने खुम्बी के बारे में कहा, ये जमीन की चीचक है, यानी उसको डिसलाइक किया। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, खुम्बी तो मन, यानी बनी इसराइल के लिए आसमान से जो नेमत उतरी थी उसकी एक किस्म है, इसका पानी आंखों के लिए शिफा है, और अजवा खजूर जन्नत का फल है, इसमें जहर का तरियाक है। यानी क्या पता चला कि मशरूम्स जो होती हैं ये भी अपने अंदर इफेक्ट रखती हैं, और इसको खाने से इंसान की आंखें अच्छी हो जाती हैं, यानी विजन अच्छा हो जाता है। फिर अगला इलाज क्या है, शहद। शहद में अल्लाह ताला ने शिफा रखी है, ये तो कुरान में भी आता है। हजरत अबू सईद कहते हैं, ये बड़ी दिलचस्प रिवायत है, आप भी सुनिएगा। अबू सईद कहते हैं कि एक शख्स नबी सल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, मेरे भाई को इसहाल की तकलीफ़ है। इसहाल कहते हैं लूज मोशन, पेट ख़राब जिसको कहते हैं। आपने फरमाया इसे शहद पिलाओ। इस आदमी ने अपने भाई को शहद पिलाया, वो फिर हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी, मैंने उसको शहद पिलाया, इसके तो इसहाल ज़्यादा हो गए, यानी और पेट लूज़ हो गया। इस पर आपने फरमाया और शहद पिलाओ। देखिए आज हम जैसा होता तो कहता, लो आपकी बात मानी तो और तबीयत ख़राब हो गई। 3 दफ़ा ये साहबी अल्लाह के नबी के पास आ गया और पेट और ख़राब हो रहा है और हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि यही पिलाओ। आपने फरमाया, अल्लाह ने सच फरमाया, तेरे भाई का पेट झूठा है, इसे शहद पिला। चुनाच इसने अपने भाई को शहद पिलाया और अल्लाह ने इसको शिफा दे दी। ये तिरमिजी की रिवायत है। इससे क्या पता चला, एक ख़ास क्वांटिटी अंदर जानी होती है, और दूसरी बात यह कि जिस्म के अंदर से जो फासद चीज़ें जो ऐसी गंदी वो पूरी निकलती है तो शिफा होती हैं। तो बाज़ दफ़ा हम डॉक्टर साहब की दवा देते हैं और फौरन पेट और ख़राब होता है तो हम परेशान होते हैं, तो परेशान ना हो। बाज़ दफ़ा ये ख़ास तौर पे जो नेचुरल चीज़ें ना, आपने सुनी होगी ये बात कि एक एलोपैथी दवाइयाँ होती हैं और एक नेचुरल है, दोनों का फ़र्क क्या है? एलोपैथिक दवा से फौरी इफेक्ट होता है, एकदम बीमारी बदलती है सेहत में, जबकि एलोपैथी या होम्योपैथी में सम ऑफ टाइम क्या होता है कि ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो जड़ों से निकल रही है, जिस्म के अंदर से निकल के साफ होती है और फिर उसके बाद दूसरी मतलब जिस्म को सफाई मिलती है। तो लिहाजा कभी कभी इस तरह का मुश्किल होता है। जब तई कि आप में से कितने लोग शहद इस्तेमाल करते हैं? माशाल्लाह, चीनी का बेस्ट ऑल्टरनेट है। टेस्ट डिवेलप कर ले, यदि मेरा ख्याल है कि अब मुझे कोई झूठ से पिला दे तो पिला दे। मैंने पर्पजली कभी याद भी नहीं कि कब आखिरी दफ़ा चीनी डाली थी, हमेशा शहद, और उसका एक ख़ास टेस्ट बन जाता है तो आपको बिल्कुल अजीब नहीं लगता। बल्कि लोग कैंड्रेल्स और इस तरह की जो चीज़ें डालते हैं, आई डोंट थिंक कि वो कैसे पीते हैं, एकदम जुबान चुनती है। तो शहद बेस्ट थिंग है, घर में होना चाहिए, टेबल के ऊपर आपके हो, सुबह नाश्ते में। आप देखिए कि जो भी टेस्ट बनाएंगे वही अच्छा लगेगा। जैम भी तो लेते हैं ना, आप जैम में चीनी है और उसमें कितने प्रिजर्वेटिव्स हैं। अगर आप उसकी जगह टोस्ट के ऊपर हनी लगा के खाते हैं तो आई थिंक सो कि इज़ ईजी टू डाइजेस्ट, और वैसे भी हम तो सवाब समझ के भी खाएंगे ना। अच्छा, क्या शहद खाने का फिर सवाब है और जैम खाने का गुना है? ये भी एक एक्सट्रीम है। बस लोगों से मैंने सुना है वो कहते हैं कि जैतून कुरान का फल है, या जैसे ऑलिव्स के साथ अनार का तस्कर आता है। तो ये समझ लीजिए थोड़ी सी बात कि कुछ फलों को जिसमें खजूर और इस तरह की चीज़ें आती है, हम ये कॉन्सेप्ट रख लेते हैं कि ये कुरान में चूँकि आ गए हैं तो इनको खाना सवाब है और ये जन्नत के फल है। असल बात क्या थी कि जिस जगह कुरान नाजिल हो रहा था ना, वहाँ ये फल थे। अगर आई एम श्योर के पाकिस्तान में कुरान नाजिल होता तो कुरान में आमों का बड़ा जिक्र होता, और वो भी लंगड़ा आम और क्या दुसैरी और चौंसा आम ना। तो जिस कल्चर में उतर रहा था ना, वहाँ का ये प्रोडक्ट था ऑलिव्स और ये। तो बाज़ दफ़ा लोग इन चीज़ों को दूसरे एंगल से ले लेते हैं। अब अल्लाह ने थाई फ्रूट कितने खूबसूरत रखे हैं, कभी आप जाके देखें थाईलैंड, आप हैरान हो जाएंगे कि जो वहाँ के फ्रूट्स हैं अनबिलीवेबल खूबसूरत। शॉकिंग पिंक में ब्लैक सीड्स है, कैन यू बिलीव। बाहर से बिल्कुल एक ब्राउनिश है, जब उसको अंदर से काटते तो लश लश करता हुआ येलो कलर का प्लम है उसमें। अल्लाह ने फ्रूट रखे, तो हर फल जन्नत का फल है, हर फल अल्लाह का फल है। आप अगर ये सोचते हैं कि एक फल को खाने से सवाब हो रहा है तो दूसरे को नहीं होगा, तो ये मिसकंसेप्शन है, और ये मैंने अक्सर लोगों में देखी, इसलिए मैंने ये जिक्र कर दिया। तो बहरहाल जो भी आप टेस्ट डिवेलप कर ले। अगली चीज़ जिसमें शिफा है वो है जमजम। जमजम के पानी में शिफा है। हज़रत जाबिर कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना कि जमजम का पानी जिस इरादे से पिया जाए वो पूरा होता है। हदीस अरबी में बड़ी खूबसूरत है, माओ जमजमा लीमा शुरी बलहू। अभी रिसेंटली उम्रे पे जाने का मौका मिला तो ये हदीस हमेशा याद रहती थी, जब भी जमजम पीते थे तो उस वक़्त दुआ कर लिया करें। घरों में है जमजम, ये इब्ने माजा की रिवायती, कोशिश करें कि जमजम को आप अपनी दुआएं कबूल कराने के लिए रख लें। मैंने घर में छुपा के रखा होता है और मैं एक घूंट से ज़्यादा नहीं पीती, क्योंकि मेरा वो दुआएं कबूल कराने का एक टूल है। तो कभी अपने हस्बैंड को सर्व कर दूं कि चले आपका रोज़ा ले लें, तो ऐसी बॉटल्स में ही होता है, तो ये के सारी पीते हैं तो मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं इनको अब देती भी नहीं। मैं कहती हूँ कि आप तो सारा पी गए एक ही दम में, तो मेरे पास इतना नहीं था। लेकिन आप देखिए ये हदीस कितनी बड़ी है। लिमा शुरीबा लहू के दो मानी है, एक मानी क्या है कि इसको भूख में पियेंगे ना तो पेट भर जाएगा, और प्यास में पियेंगे तो प्यास ख़त्म होगी। हमारी एक सिस्टर अभी क्लास की हैं, तो वो उम्र से रिसेंटली आई हैं, तो बड़ी उम्र भी है थोड़ी सी, यानी, और फिर दूसरी आपको होता है कि इस उम्र में शुगर और तकलीफ़ है, तो वो बड़ी परेशान थी जब यहाँ से जा रही थी कि मेरा वजू नहीं ठहरता, तो मैं इतनी दूर कैसे जाऊंगी और बार बार पर हरम में आना जाना मुश्किल लगता है। लेकिन जब आई तो अपना अमेजिंग एक्सपीरियंस बता रही थी कि साजा मैं पेट भर के पानी पीती थी, लेकिन मैं दो दो नमाजें 3 दिन तक मस्जिद में रहती थी, ना मुझे यूरिनेशन की ज़रूरत पड़ती थी, ना मुझे भूख लगती थी, ना वजू टूटता था। तो जमजम के क्या कहने। इसी तरह एक सहाबी थे, वो जब जमजम का पानी पीते थे इसी हदीस को सोचते, तो कहते थे कि अल्लाह मैं इस जमजम को इसलिए पी रहा हूँ कि तू मुझे क़यामत के दिन हौज़े कौसर से पिलाना, मुझे नबी के हाथ से पिलाना बीमारियों। आप दुआ मांगा करें, जिस नीयत से पियेंगे अल्लाह ताला आपकी वो दुआ को कबूल करेगा। फिर इसी तरह ज़ीरा खाते हैं, पकाते हैं, पुलाव में डालते हैं ना, सना और ज़ीरा में हर बीमारी के लिए शिफा है। ये रिवायत है उबई इब्ने उम्मे हराम से रज़ी अल्लाह अन्हा, साहबी हैं ये रज़ी अल्लाह अन्हो, कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना है कि ज़ीरे में मौत के अलावा हर चीज़ से शिफा है। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया। सनूत का लफ्ज़ ज़ीरा और पनीर दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, यानी चीज़ और ज़ीरा, इसमें शिफा। तो खाने में ज़ीरा डालें। अच्छा, मैं खुद हैरान हूँ, मैंने ये रिवायत पहले नहीं पढ़ी हुई थी, लेकिन मुझे गर्म मसालों में सबसे ज़्यादा पसंद ज़ीरा। आई डोंट नो वाई, बड़ा मज़ा आता है चावलों में, और वो गर्म नहीं होता, और वाइट ज़ीरा ज़्यादा अच्छा होता है, खुशबू भी अच्छी होती है। बिल्कुल सही। चलिए अब आखिरी टॉपिक करते हैं इस हिस्से का। फिर इसके बाद इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट स्टेप शुरू हो जाएगा, और वो क्या है कि बीमारी दूर करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। पहली चीज़, हाथ में कड़ा पहनना। बस लोगों के हाथों में आपने कड़े देखे होंगे, कड़ा समझते हैं जस्ट लाइक ब्रेसलेट। फिर इसी तरह छल्ला, ब्लैक कलर के छल्ले या सिल्वर के कुछ रिंग्स आप कह लीजिए। फिर इसी तरह मन का या धागा वगैरह बांधना मना है। हदीस पढ़ेंगे तो बात वाज़े होगी। हज़रत उकबा बिन आमिर अल जोहनी कहते हैं कि नबी सल्लम की खिदमत में एक जमात इस्लाम लाने के लिए हाजिर हुई। अल्लाह के नबी ने 9 आदमियों से बैत ली और 10वें आदमी की बैत लेने से हाथ रोक लिया। उन्होंने पूछा, या रसूलुल्लाह, आपने 9 आदमियों की बैत तो ले ली है और इस एक आदमी की बैत नहीं ली। आपने इरशाद फरमाया, इसने तमीमा, तमीमा कहते हैं तावीज़ को, छल्ले को, मन का या धागा वगैरह बांधा हुआ था। चुनाचे आपने अपना हाथ आगे बढ़ाकर इसे काट दिया और इसके बाद इसे बैत ली। फिर फरमाया, जिसने तमीमा लटकाया उसने शिर्क किया। इसे अहमद ने रिवायत किया। अब यहाँ देख लीजिए कि ये चीज़ें कभी आप लोगों के हाथों में देखें तो उनको प्यार से तरीके से बताएं, पहले अच्छी बात बताएं फिर इस बात पर रोकें। लेकिन ऐसी कोई चीज़ सही नहीं है। बाद लोग कब्रों पर जाते हैं, वहाँ से धागे ले आते हैं और वो बांध देते हैं। कभी बच्चों की गर्दनों में काले धागे आपने देखे लोगों की? नहीं पहनने चाहिए, ये सब शिर्क है। देखिए ये इशू कल हमने काफ़ी डिटेल से शेयर किया इधर। एक सिस्टर के कुछ क्वेश्चन इस तरह के थे, कोई भी काम आदत पे करते हैं ना आप, जो मर्जी करें, लेकिन जिस चीज़ में इबादत आ जाती है ना, जिसको आप रिलीजन के साथ जोड़ देते हैं, तो उसका पीछे प्रूफ होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नज़र बद है, तो नबी सल्लम के दौर में भी तो किसी को नज़र लगी होगी ना, तो इस तरह देख ले। और इन चीज़ों पे बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाना चाहिए। हम चूँकि हदीस पढ़ रहे हैं ना, तो हमारे सामने ये हदीस की बात आ गई है, तो इस तरह की चीज़ों को हम ले कर देख सकते हैं। इंशाल्लाह आप नबी सल्लम के अगर बच्चों को पढ़े, जैसे नवासे थे हज़रत हसन और हुसैन, तो आपने उनको दम किया। अब आप ये नहीं कह सकते कि दम नहीं करना चाहिए, नबी सल्लम से दम मौजूद है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लम पे दम किया। तो जो बहुत सारी ऐसी खूबसूरत चीज़ें हमारे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उन्हीं में से ये चीज़ है कि जो आपने उनको देखा तो मना कर दिया। फिर इसी तरह आप देखिए, जादू के जरिए जादू का इलाज करना मना है। बस लोग कहते हैं हम जादू कर नहीं रहे, लेकिन हम पे किसी ने जादू किया तो हम उसका इलाज करा रहे हैं। तो ये हदीस सुन लेते हैं। हज़रत जाबिर कहते हैं नबी सल्लम से जादू के ज़रिए जादू का इलाज कराने के बारे में पूछा गया, तो आपने फरमाया कि ये शैतानी फेल है। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया। पहली बात है, आपको कैसे यकीन है किसी ने आप पे जादू किया, राइट? और दूसरी बात है कि अगर एक ने गलत काम किया तो अब आप भी वही गलत काम करेंगे, राइट? तो इस तरह की चीज़ों से अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। फिर अगली चीज़ जो नहीं करनी, वो है शिरकिया कलेमात से पाक दम जायज़ है। ये नोट कीजिएगा, दम जायज़ है। कौन सा? जिसमें शिर्क वाले लफ्ज़ ना हो। हज़रत औफ बिन मालिक अश्जई से रिवायत है कि हम ज़माने जाहिलियत में दम किया करते थे। हमने रसूलुल्लाह से पूछा, या रसूलुल्लाह, आप इस बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, मुझे वो दम पढ़कर सुनाओ। सुनने के बाद आपने फरमाया, ऐसे दम में कोई हरज नहीं जिसमें शिर्क ना हो। ठीक है, तो हमें रुख्सत मिल गई, सही मुस्लिम की रिवायत है। तो हमारा दीन जो है वो दलील को मानता है, वो मिल गई तो अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसी तरफ देखिए, शिरकिया फाल से बाज़ुकात मुश्किलात और बीमारियां दूर हो जाती हैं। ये काबिले गौर है। बात कहते हैं, अच्छा अगर नहीं है तो हम तो फलां बाबे के पास गए थे, और बाज लोग हिंदुओं के पास जाते हैं। मेरे इल्म में ऐसे भी लोग हैं कि अपने इलाज के लिए ऐसे गैर मुस्लिम लोगों के पास जाते हैं और शिफा हो जाती है। तो आप सुन लीजिए कि हो जाती है, लेकिन क्या हुक्म है उसको हम देखेंगे। फिर दूसरी बात है, शिरकिया दम और शिरकिया तावीज़ करना मना है, और मसनून दम के अल्फाज दर्जा ज़ैल है। हज़रत अब्दुल्ला से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना कि दम टूने और तावीज़ शिरक है। हज़रत अब्दुल्ला की बीवी ने कहा, अब्दुल्ला तुम ये कैसे कहते हो? मुझे आँख में शदीद दर्द था, फलां यहूदी के यहाँ हमारा आना जाना है, इसने मुझे दम किया और मुझे आराम आ गया। हज़रत अब्दुल्ला ने कहा, ये आँख की तकलीफ़ शैतान का काम था जो अपने हाथ से तेरी आँख को अजियत पहुँचा रहा था। जब इस यहूदी ने दम किया तो शैतान बाज आ गया। जैनब, तुझे दम करने के लिए वो कलेमात काफ़ी हैं जो रसूलुल्लाह पढ़ते थे। आपने दम के ये कलेमात इरशाद फरमाए। मैं बोलती हूँ, आप भी दोहरा लीजिए, पीछे फ़ायदा होगा। अस्हिबिल बासा रब्बन नासी वश्फी انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما। इसका तर्जमा देखिए कितना खूबसूरत है। ऐ लोगों के रब, इस बीमारी को दूर फरमा, तू ही शिफा देने वाला है, शिफा सिर्फ तेरी ही तरफ से है, ऐसी शिफा अता फरमा जो किसी किस्म की बीमारी ना छोड़े। ठीक है, इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया। तो ये छोटी छोटी दुआएं याद होनी चाहिए ताकि वक्त पड़ने पे हम पढ़ सकें। फिर इसी तरह बीमार आदमी पर दायां हाथ यानी राइट हैंड फेर कर ऐसे अल्लाह से शिफा के लिए मंदरजा ज़ैल दुआएं मांगनी चाहिए। अब ये कुछ दुआएं हैं जो अल्लाह के नबी मांगा करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, आप जब किसी मरीज़ के पास जाते या आपके पास कोई मरीज़ लाया जाता तो फरमाते, बल्कि ये वही दुआ है जी, ये दुआ हो गई, ताला हम सबको बचा के रखे स्किन डिजीज़ेस, जिसमें बर्स लेप्रेसी कह लीजिए और कोढ़, दीवानगी और मुख्तलिफ बीमारियों से बचने की दुआ, ये हमने अपने पिछले टॉपिक में भी की थी, यहाँ ये दुआ आपके पास बुक में भी आ गई। हज़रत अनस से रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए अल्लाह मैं जुनून, कोढ़, बरस और बुरी बीमारियों से तेरी पनाह तलब करता हूँ। इसे निसाई ने रिवायत किया, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ुबिका मिनल जुनूनी वल जजामी वल बरसी व मिन सैयिल असकाम। ठीक है, तो ये दुआ पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपको इन सारी चीज़ों से बचाएगा। अब एक सवाल है कि जादू का इलाज जादू से तो नहीं करना, तो क्या करें? शक तो हो सकता है और कोई कर भी सकता है आप पे, तो फिर जादू के असर से महफूज रखने के लिए खुद को और दूसरों को मुआवजात पढ़ें, कुल औज़ु बिरब्बिन नास और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ें, और दम करते वक्त जिस्म पर हाथ फेरना मसनून है। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि नबी सल्लम जादू के असर से जब बीमार हुए तो मुआवजात, मुआवजात का मानी है कि दो वो सूरतें जिनके ज़रिए से पनाह ली जाती है। ठीक है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास और फलक, ये पढ़ते दम करते और अपने हाथ मुबारक अपने जिस्म पर फेरते थे। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया। तो आप और मैं भी ये काम कर सकते हैं, रात को सोते वक्त जब बिस्तर पे बैठे आखिरी सूरतें पढ़ें कुल, और इस तरह हाथों पे करके, तो उसके बाद आप यूँ शुरू करके तो पूरे जिस्म पे हाथ फेर लेते थे, तो ये भी एक अच्छा दम है। फिर इसी तरह किसी जगह दर्द हो तो वहाँ हाथ रख कर ये मसनून दुआ मांगनी चाहिए, आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिस्म में किसी के दर्द होता तो क्या करते, रिवायत सुनते हैं। हज़रत उस्मान बिन अबुल आस फरमाते हैं कि इस्लाम लाने के बाद से मेरे जिस्म में दर्द रहता था, मैंने रसूलुल्लाह को बताया तो रसूलुल्लाह ने हज़रत उस्मान से कहा कि जिस जगह दर्द है वहाँ हाथ रख कर 3 बार बिस्मिल्लाह कहो और 7 मरतबा ये दुआ कहो, यानी 3 दफ़ा आप कहेंगे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्ला। ठीक है, फिर 7 दफ़ा आप पढ़ेंगे, आप दोहराना चाहें तो दोहरा लीजिए, आऊज़ु बिल्लाही वक़ुदरतिही मिन शर्री मा अजिदु व उहाज़िरु। तर्जमा इसका क्या है, मैं अल्लाह ताला की कुदरत के वसीले से पनाह मांगता हूँ जो मुझे लाहक है या जिसके लाहक होने का मुझे अंदेशा है। ये मुस्लिम की रिवायत है। अब आप देखिए कि जब हम इस तरह हदीस पढ़ते हैं तो बाज़ दफ़ा बात बोझल होती है, लेकिन असल नॉलेज वही होता है कि जिसके साथ हमारी दलील भी हो। अब ये सारी बातें मैं आपको अपने लफ्ज़ों में बताऊं तो मुझे यकीन है कि आप ज़्यादा इंजॉय करेंगे, लेकिन आपका शरह सदर नहीं होगा जब किसी चीज़ का आपके सामने रेफरेंस मौजूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज मौजूद हैं, तो उसको सुनकर दिल में ज़्यादा खुशी होती है। तो इंशाल्लाह जब आपके पास बुक भी ये होगी, आप सब इस बुक को ज़रूर हासिल करें, ये छोटी छोटी चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी, तो ज़िंदगी में कभी भी दुख सुख तो साथ ही होता है, लेकिन ये चीज़ें आपको मुझे फ़ायदा देंगी। अब आखिरी बात ये है, इस मौजू की फिर आगे थोड़ा आगे चलेंगे, नज़र का क्या हुक्म है, क्या नज़र लगती है? तो आप देखिए कि नज़र में असर है, और बुरी नज़र से महफूज रहने के लिए कौन से कलेमात हैं? हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, नज़र हक है, अगर कोई चीज़ तकदीर पर गालिब आने वाली होती तो नज़र होती। यानी ये जो हम कहते हैं ना कि बच्चे को नज़र लग गई, ये बिल्कुल सही है, नज़र लग जाती है। इसी तरह आपने एक और रिवायत में आता है कि नज़र ऊँट को हांडी तक पहुँचा देती है, यानी ऊँट जब कभी बड़ा अच्छा खूबसूरत दिखे किसी को, कोई उसको नज़र भर के देखे तो ऊँट बीमार हो जाता है और फिर उसको ज़िबा करके पकाना पड़ता है। इस तरह की ये चीज़ है। अब करें क्या? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन और हुसैन کے لیے پناہ مانگتے اور فرماتے، تم دونوں کے باپ یعنی ابراہیم علیہ السلام ان کلمات کے ذریعے سے حضرت اسماعیل اور اسحاق کے لیے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیے کہ ہم سب کے لیے کتنی خوبصورت بات آ گئی کہ حضرت ابراہیم اپنے بچوں کو دم کرتے تھے کن لفظوں کے ساتھ؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان و حامت و من کل عین لامت۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں تم دونوں کو ہر شیطان، تکلیف دہ جانور اور نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ کے کامل اور پر اثر کلمات کے ذریعے سے پناہ مانگتا ہوں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ ایک کو مانگنے، وہ تو کما تھا نا، آج آپ اور میں کسی کے لیے مانگے تو بس اوئی زکا کہہ لیں، اوئی زکی کہہ لیں، اور اگر دعا مانگنے والا جو ہے وہ اعوذ بھی کہہ لے تو بھی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ مفہوم بدل جاتا ہے ایک کے لیے یا زیادہ کے لیے کرنے کے لیے۔ اچھا، ابھی میں نے بیچ میں آپ کو ایک مشورہ دیا تھا، صرف مشورہ تھا، کوئی فتویٰ نہیں تھا، کہ علاج سے حت الوسع بچے دوائیاں کھانے سے اور خود کو اپنے لیے رکھے۔ تو اس پہ ایک حدیث سن لیجئے کہ بیماری میں دم نہ کروانے اور محض اللہ پر بھروسہ کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت سے 70,000 آدمی حساب کے بغیر جنت میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے؟ پہلے تو آپ اور میں دعا کریں کہ ہم ان میں ہوں۔ فرمایا وہ کون ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دم نہیں کرواتے، برا شگون نہیں لیتے تھے، بلکہ ہر معاملے پر محض اللہ پر توکل کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ایک لفظ کی بھی اس میں ڈسکرپشن کی ضرورت ہے؟ مجھے تو اس کو پڑھتے ہوئے وہی بات سمجھ آ رہی ہے کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ انا ان ظن عبدی بھی، اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ اس میں بھی شفا اللہ نے دینی ہے، گولی کھاؤں گی اس میں بھی شفا اللہ نے دینی ہے، انجیکشن لگاؤں گی اس میں، اللہ تو مجھے ویسی شفا دے دے۔ لیکن یہ یقین کے درجے ہیں، یاد رکھیے، اگر ہمارا یقین اتنا پختہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دوائیوں سے انشاءاللہ بچا لے گا۔ یہ اس میں اصل میں بڑی طویل روایت ہے، ادھر مختصر دی ہوئی ہے۔ ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، تو آپ باہر نکلے تو آپ نے صحابہ کو بات کرتے ہوئے دیکھا، اور وہ اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ کون 70,000 لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو صحابہ کرام جو تھے وہ سوچ میں پڑ گئے، کسی نے کہا وہ نبی ہوں گے، نبیوں کی نسل سے ہوں گے۔ آپ نے کچھ بتایا نہیں، ان کو سوچنے کا موقع دیا۔ ٹھیک ہے، جب وہ کافی حد تک سوچ چکے نا، تو اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا یہ بات کہ جو برا شگون نہیں لیتے، دم نہیں کرواتے۔ دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے الاؤڈ، ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے ریکمینڈیڈ، فرق ہے نا، یہ لیولز ہیں۔ الاؤڈ ہے دم کرانا، الاؤڈ ہے۔ ایک بندہ توکل کے اس درجے پہ ہے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کر لوں۔ اب اس میں وہ جو دم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے وہ نہیں آتے، اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرے کا دام، کسی سے دعا کرانا، اس پہ یقین کرنے کے بجائے اللہ پہ رکھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کو حلال اور حرام پہ نہ لیجئے گا، بیٹر اینڈ دی بیسٹ پہ لیجئے گا۔ ٹھیک ہے، تو جس کو سمجھ آتی ہے وہ اس کو مان جائے گا، جس کو نہیں سمجھ آئے گی وہ اس کے اوپر اپنے آپ کو الگ کر دے گا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز، بس آخری روایت ہے، کہ کسی بیمار یا تکلیف زدہ کو دیکھے تو کیا پڑھے۔ یہ دعا بھی ہم اپنے پچھلے ٹاپک میں کر چکے، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ یہ ساری دعائیں اس خاص سناریو میں ہمیں اچھی سمجھ آئیں گی، لیکن آج آپ کے اس سبق میں بھی آ گئی کہ کسی کو بھی تکلیف میں دیکھیں تو کیا دعا مانگیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا کہ جب بھی کسی کو کسی ایسے کام میں دیکھتے جو آپ پسند نہیں کرتے۔ اب ہم میں سے کوئی بیمار ہونا پسند کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ لڑائی پسند کرتے ہیں؟ ہمارے شوہر ہم سے ناراض ہم پسند کرتے ہیں؟ نہیں۔ تو زندگی میں ارد گرد جب بھی کسی انسان کو کسی تکلیف میں دیکھے تو یہ دعا مانگ لیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس تکلیف سے ضرور بچا لے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس نے کسی مصیبت زدہ یا بیمار آدمی کو دیکھ کر کہا الحمدللہ الذی عافانی من مبتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یہ دعا کے لفظ ہیں کہ تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جس نے مجھے اس مصیبت سے بچا لیا جس میں تجھے مبتلا کیا، اور مجھے دوسری ساری مخلوق پر فضیلت دی، تو وہ کبھی اس مصیبت میں گرفتار نہیں ہوگا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ میں اس کو پڑھتے ہوئے ایک واقعے کو بھلا نہیں پا رہی کہ ایک دفعہ ایک شخص تھے تو قافلے سے جدا ہو گئے، نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا اس لیے نہیں لے رہی۔ تو انہوں نے देखा किधर जाऊं तो दूर देखा एक कोठरी है, तो उस कोठरी के बाहर खड़े में तुमको अंदर से ये दुआ पढ़ता हुआ एक शख्स दिख रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी आफ़ानी मिम्म इब्तिला कभी व फद्दलनी ला कसीर मिम्मन हलक तब्तीला। तो इनको लगा कि कोई इंसान इधर मौजूद है, मैं जाऊं। अंदर गए तो देखा कि एक शख्स हैंडीकैप्ड, नाबीना, सिर्फ उसके आधा धड़ जिस्म का और चेहरा जुबान ठीक थी, और वो यही दुआ पढ़ रहा है। कहने लगे कि बुजुर्गो आप कौन है, कैसे हैं? जब बात की, कहा ये आप किस चीज पे शुक्र अदा कर रहे थे कि अल्लाह तूने मुझे बहुत सारों से अच्छा रखा है, आपके तो जिस्म का कोई उस सलामत नहीं है। कहने लगे कि मैं आपको बाद में अपनी कहानी सुनाऊंगा, लेकिन आपको मेरे से एक वादा करना पड़ेगा कि आप मेरा एक काम करेंगे। कहा ठीक है, कर दूंगा, आप बताएं क्या है, आप कहाँ, इधर कैसे? कहने लगे कि मेरा पूरा घर था, खानदान था, सब था, सब ठीक था। एक ऐसा मेरे ऊपर गर्दिश आई, मेरा जवान बेटा फौत हो गया, उसकी बीवी फौत हो गई, मैं हैंडीकैप्ड हो गया, मेरा एक छोटा पोता है, माँ बाप चूँकि फौत हो गए तो मैं उस बच्चे की टेक केयर करता हूँ। तो कहा कि ये आप तारीफ किस बात पे कर रहे हैं अल्लाह की? कहा बताओ कि आज दुनिया में कितने लोग हैं जो कुफर पे नहीं है? हाँ, तो क्या अल्लाह ने मुझे कुफर से इस्लाम नहीं दिया? मैं इस पे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि उसने मुझे कुफर की तकलीफ से बचाया। कितने लोग दुनिया में ना शुक्रे नहीं, तो मैं शुक्र कर रहा हूँ, अभी तो मैं जुबान का शुक्र अदा कर रहा हूँ। यानी अब देखिए, जिसने शुक्र करना है वो इन चीज़ों पर भी करेगा। खैर, ये बड़े इंप्रेस हुए, कहने लगे बुजुर्गों बताओ कि आपका मैं क्या काम करूं? कहने लगे वो मेरा पोता जो है वो कल से घर नहीं आया, अब मैं तो जा नहीं सकता, जाओ उसको ढूंढ के लाओ। अब ये बाहर निकले, ढूंढ रहे हैं बच्चा किधर होगा सहरा में। खैर, कहते हैं देखते देखते दूर इनको कहीं से गिद्ध दिखे, वल्चर्स होते हैं ना जो लाशों को खाते हैं। कहते हैं ना चाहते हुए भी मैं उस तरफ चल पड़ा, और वही हुआ जो खतरा था, देखा तो नीचे उस छोटे बच्चे की लाश थी। कहते मेरे जहन में आ गया कि ये उसी बुजुर्ग का पोता है। अब वापिस आ रहे हैं, अब सोच में ये है कि मैं क्या कहूँ उनको, क्या जवाब दूंगा। तो कहते हैं कि जब करीब आ रहा हूँ कि क्या कहूँ, तो मेरे कदमों की आवाज़ सुन के बुजुर्ग बोले अच्छा वो मेरा बच्चा आ गया, जिससे उम्मीद भरी नजरों से। तो ये कहते हैं कि मैंने उन्हें कहा कि बुजुर्ग को ये बताएं कि अल्लाह को आपसे ज्यादा प्यार है या हजरत याकूब से? कहा ऑफकोर्स हजरत याकूब से ज्यादा प्यार है। अच्छा, अल्लाह को फलां नबी से ज्यादा प्यार है या आपसे? दो तीन नबियों के नाम लिए। कौन से? तो कहा कि फिर आप अपने बच्चे पे सब्र कर लें, और आपका पोता फौत हो गया। फिर वो कहते हैं कि उन्होंने चीख मारी और उसके बाद उनकी रूह निकल गई। इन्होंने उसका कफन दफन किया और उनको दफनाया। रात को जब सोए, ख्वाब में देखा कि वो शख्स बिल्कुल ठीक हालत में, सेहतमंद, बड़ा खूबसूरत इनको मिलता है। ये कहते हैं कि सुबह तक तो आपकी हालत इतनी ख़राब थी, आप इतने दुखी और तकलीफ़ की हालत में बीमार थे, तो आपकी ये हालत कैसे बदली? तो कहते हैं कि उस पर फिर उन्होंने कुरान की वायत पढ़ी कि हमने तुम्हें वो बदला दिया बीमा सबर तुम, कि तुमने जो सबर किया उस पर हमने तुम्हें ये बदला दिया। तो याद रखिए, किसी को तकलीफ में देखकर जब आप वो दुआ मांगते हैं तो असल में आप शुक्र का भी इजहार करते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे इस तकलीफ से बचाया। ना शुक्रपन खत्म करें हम सब, हर वक्त रोते रहते हैं, कुछ नहीं है हमें, हम बिल्कुल ठीक है, सिर्फ हम खुद को बहुत पेम्पर करते हैं, जितना जिस्म को नरमियों में और आसाइशों में पाल लिए। आज हमने अपने बच्चों का भी यही हाल किया, छोटी छोटी चीज़ों पे हम उनको इतना ज़्यादा आदी कर देते हैं कि ज़रा हवा भी चलती है तो उनके नाक बहने लगती है। बहरहाल, अल्लाह ताला हम सबको बचाए। ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में क्या करें? आपको लग रहा है कि आपके ऊपर ज़िंदगी के आखिरी असरात हैं, तो अब क्या करें? तो दुआ मांगें। कौन सी दुआ है? हज़रत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के नबी की वफ़ात मुबारक से पहले मैंने झुक कर आपकी बात सुनी, और आप अपनी पुश्त की टेक मेरे साथ लगाए हुए थे, यानी ऐसे मेरा सहारा लेकर बैठे हुए थे। फिर आपने फरमाया अल्लाहुम्मग़फिरली वरहमनी वल्हिकनी बिर्रफीक, ए अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा और मुझे रफीक से मिला दे, यानी अल्लाह से मिला दे। इसे बुखारी ने रिवायत किया। क्या पता चला कि जब बंदे को ज़िंदगी में अल्लाह ताला से मोहब्बत है, उसकी तरफ तवज्जो है, तो मौत के वक्त भी है। कभी भी आपको महसूस हो, कभी कभी आपको ऐसा होता है दिल घबराने लग जाता है, सांस सुखड़ने लगे, ये दुआ मांग लें। अगर हमारी मौत का वक्त आ चुका होगा या करीब है, तो अल्लाह ताला हमें खुद उससे बचाएगा। तो ये थी चंद बातें जो बीमारी और बीमार पुरसी के बारे में थी। इसके बाद अब हमारा वो टॉपिक शुरू हो रहा है जिसका ताल्लुक मौत और मैयत से है। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट नशिस्त जो होगी उसमें मौत और मैयत के मसाइल होंगे बहुत डिटेल से, कफन दफन और मरने वाले के पास क्या किया जाए, तकलीफ़ मौत की। ऑफ कोर्स हमारा अगला टॉपिक मौत की सख्तियों से शुरू होगा। अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें उस वक्त के आने से पहले उसकी तैयारी करने वाला बना दे, और जो बात आज हमने सुनी उसको सुनते वक्त जितनी बीमारियों का हमने तذکرہ आज सुना अल्लाह ताला हमें उसे महफूज रखे। जितने इलाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए हमें भी उनको करने की तौफीक दे। यहाँ बैठे हुए परदेश में दूर अपने मुल्कों में हमारे रिश्तेदारों में जो बीमार है अल्लाह ताला उनको सेहत और आफियत दे, और हम सब अल्लाह से ये दुआ करें कि हमें दीन के लिए सेहत दे, हम उसकी इबादत के लिए सेहत लें, और इस तरह से बेहतरीन तरीके से अल्लाह हमें बीमारियों से पाक कर दे जैसे कि बीमारी कभी आई नहीं।